हर साल 15 अक्टूबर को पांचवा एवेन्यू अपने शटर खोलता, कालीन बिछाता और खिड़कियों पर तीन तीन परतों के पर्दे टांगता। 1 नवंबर तक ये घरेलू अनुष्ठान पूरा हो जाता और समाज अपनी अपनी जगह संभाल कर नए मौसम की तैयारी में जुट जाता। 15 नवंबर तक मौसम पूरे शबाब पर होता। ओपेरा और थिएटर नई पेशकशें उतारते, रात्रि भोज के न्योते जमा होते जाते, नाच की तारीखें तय हो जाती। और ठीक इन्हीं दिनों श्रीमती आर्चर हमेशा कहती कि न्यूयॉर्क बहुत बदल गया है। भाग न लेने वालों के ऊंचे आसन से श्री जैक्सन और मिस सोफी की मदद से वे हर नई दरार और सामाजिक बगीचे की क्यारियों में उगते अजीब खरपतवार खोज लेती। जवानी में आर्चर माँ के इस वार्षिक निदान की राह देखता, उसकी लापरवाह नजर से छोटे छोटे बदलावों की गिनती सुनता। श्रीमती आर्चर की दृष्टि में न्यूयॉर्क जब भी बदलता बदतर ही होता। मिस सोफी पूरी सहमत रहती। दुनियादार आदमी होने के नाते श्री सिलर्टन जैक्सन अपना फैसला टाल जाते और दोनों महिलाओं के विलापों को मजे लेती तटस्थता से सुनते। पर वे भी इनकार नहीं करते थे कि न्यूयॉर्क बदल रहा है और विवाह की दूसरी सर्दियां देख रहे न्यूलैंड आर्चर को भी मानना पड़ा, न्यूयॉर्क अगर बदल नहीं चुका तो बदल जरूर रहा है। ये विषय हमेशा की तरह श्रीमती आर्चर के थैंक्सगिविंग भोज में फिर छिड़े। जिस दिन वर्ष के वरदानों के लिए धन्यवाद देना होता, उस दिन अपनी दुनिया पर उदास नजर डालकर ये सोचना उनकी आदत थी कि आखिर धन्यवाद किस बात का। समाज के लिए तो कुछ नहीं था, अगर उसके अस्तित्व की बात ही की जाए तो वो बाइबल के शाप का पात्र अधिक था। दरअसल सबको मालूम था कि सेंट मैथ्यू के नए पादरी डॉक्टर एशमोर ने थैंक्सगिविंग उपदेश के लिए यर्मियाह के दूसरे अध्याय का 25वां वचन चुनकर क्या कहना चाहा था। नवनियुक्त डॉक्टर एशमोर प्रगतिशील माने जाते थे। उनके उपदेश विचारों के साहस और भाषा की ताजगी के लिए सराहे जाते थे। समाज पर बरसते समय वे हमेशा उसकी धारा की बात करते और श्रीमती आर्चर को किसी धारा का हिस्सा होने का एहसास डरावना भी लगता था और मोहक भी। डॉक्टर एशमोर ठीक कहते हैं, सचमुच एक साफ धारा दिख रही है, उन्होंने ऐसे कहा जैसे वो घर की दरार जैसी आंख से देखी मापी जा सकने वाली चीज हो। फिर भी थैंक्सगिविंग के उपदेश के लिए वो विषय चुनना अजीब था। मिस जैक्सन ने राय दी, मेजबान ने रूखा जवाब दिया, शायद वे चाहते हैं कि जो बचा है उसके लिए धन्यवाद दें। आर्चर हर साल माँ के इन भविष्यवाणी नुमा निदानों पर मुस्कराता था, पर इस बार सूची सुनते हुए उसे भी मानना पड़ा कि धारा साफ नजर आती है। पहनावे की फिजूल खर्ची तो हद पार कर गई, मिस जैक्सन ने बात छेड़ी। सिलर्टन मुझे ओपेरा की पहली रात ले गए और पिछले साल की पोशाकों में मैं बस जेन मेरी की पोशाक पहचान सकी। उसका भी अगला पल्ला बदला हुआ था और वो पोशाक उसने 2 ही साल पहले वर्थ से मंगवाई थी। ये मुझे इसलिए पता है कि
जो दर्जन पहनने से पहले उसकी पोशाकें दुरुस्त करती है वही मेरी भी दर्जन है। आह, जेन मेरी हमारे पक्ष की है, श्रीमती आर्चर ने आह भरी। उनकी पीढ़ी को उस चलन से रश्क न था जिसमें औरतें पेरिस की पोशाकें सीमा शुल्क से निकलते ही इतराने लगती थीं, बजाय ताले में पकने देने के। हाँ, वो उन थोड़ी सी बची हुई महिलाओं में है। मेरी जवानी में ताजा फैशन पहनना ओछापन समझा जाता था, मिस जैक्सन ने जोड़ा। एमी सिलर्टन हमेशा कहती थीं कि बोस्टन में नियम था, पेरिस की पोशाकें 2 साल रखकर तब पहनो। हर काम शान से करने वाली वृद्धा बैक्स्टर पेनिलो साल में 12 पोशाकें मंगाती, 2 मखमल, 2 साटन, 2 रेशम, 6 पॉपलिन और बढ़िया कश्मीरी। बंधा ऑर्डर था, आखिरी 2 साल बीमारी में न पहन पाई तो वर्थ की 48 अनपहनी पोशाकें निकली। और बेटियों ने जब शोक वस्त्र उतारे तो पहली खेप पहनकर सिम्फनी संगीत सभाओं में गई, फिर भी फैशन से आगे दौड़ती नहीं दिखी। हाँ भाई, बोस्टन न्यूयॉर्क से ज्यादा परंपरानिष्ठ है, पर मुझे यही नियम सुरक्षित लगता है कि महिला अपनी फ्रांसीसी पोशाकें एक मौसम रखकर तब पहने, श्रीमती आर्चर ने माना। ये नई रीत ब्यूफर्ट ने चलाई, नई पोशाक आते ही पत्नी को पहना देता है। कहूंगी रेजीना की सारी शालीनता न होती तो वो भी वैसी ही दिखती जैसी जैसी। मिस जैक्सन ने मेज के चारों ओर नजर दौड़ाई, जेनी की उभरी सी टकटकी से टकराई और बात अस्पष्ट बुदबुदाहट में उड़ा दी जैसी उसकी प्रतिद्वंद्वी दिखती है। श्री सिलर्टन जैक्सन ने ऐसे पूरा किया मानो कोई सूक्ती गढ़ रहे हो।
ओ, महिलाएं धीमे से बुदबुदाई। श्रीमती आर्चर ने कुछ तो बेटी का ध्यान वर्जित विषय से हटाने को जोड़ा।
बेचारी रेजीना, उसका थैंक्स गिविंग इस बार सुखद नहीं रहा होगा। ब्यूफर्ट की सट्टेबाजी की अफवाहें सुनी सिलर्टन, श्री जैक्सन ने लापरवाही से सिर हिलाया। फैली हुई कहानी की पुष्टि करना उन्हें गवारा न था। महफिल पर बोझिल चुप्पी उतर आई। सच तो ये है कि ब्यूफर्ट को कोई पसंद नहीं करता था और उसके निजी जीवन के बारे में बुरे से बुरा सोचना अप्रिय भी नहीं लगता था, पर ये विचार कि उसने पत्नी के खानदान पर आर्थिक कलंक लगाया है इतना स्तब्धकारी था कि उसके दुश्मन भी उसका मजा नहीं ले सकते थे। आर्चर का न्यूयॉर्क निजी रिश्तों में पाखंड सह लेता, पर व्यापार में बेदाग ईमानदारी मांगता था। नामी बैंकर के बदनाम डूबने को अरसा बीता था, पर सबको याद था पिछली बार फर्म के मुखियाओं का कैसा सामाजिक पतन हुआ। ब्यूफर्ट के पास चाहे जितनी ताकत हो और रेजीना चाहे जितनी लोकप्रिय, अगर उसकी गैर कानूनी सट्टेबाजी की अफवाहें सच निकली तो डलास खानदान की एकजुटता भी बेचारी रेजीना को नहीं बचा पाएगी। बातचीत कम डरावने विषयों की ओर मुड़ी, पर हर छुई बात श्रीमती आर्चर के तेज बदलाव की धारा वाले एहसास की पुष्टि करता लगता। बेशक न्यूलैंड, मुझे पता है तुम हमारी प्यारी मे को श्रीमती स्ट्रूथर्स की रविवार शामों में जाने देते हो, श्रीमती आर्चर ने शुरू किया। मे ने चहक कर बात काटी। अब तो सब लोग श्रीमती स्ट्रूथर्स के यहाँ जाते हैं, उन्हें नानी के आखिरी स्वागत समारोह में भी बुलाया गया था। यही है, आर्चर ने सोचा, न्यूयॉर्क का अपने संक्रमण संभालने का ढंग, बदलाव पूरा होने तक उसे अनदेखा करने का नाटक, और उसके बाद नेक नियति से ये मान लेना कि वो पिछली पीढ़ी में घट चुका था। किले में हमेशा कोई गद्दार होता है, और जब वो चाबियां सौंप चुके तो दुर्ग अजेय था। इस दावे से क्या हासिल? लोगों ने एक बार श्रीमती स्ट्रूथर्स का आरामदेह रविवारी आतिथ्य चख लिया तो कौन याद रखना चाहेगा कि उनकी शैंपेन दरअसल रूपांतरित जूता पॉलिश है। जानती हूँ बेटा, जानती हूँ, श्रीमती आर्चर ने आह भरी। जब तक लोग मौज मस्ती के पीछे भागेंगे ये सब होना ही है, पर तुम्हारी ममेरी बहन ओलेंस्का ने सबसे पहले श्रीमती स्ट्रूथर्स को मान्यता दी, यही बात मैं कभी माफ नहीं कर पाती। युवा श्रीमती आर्चर के चेहरे पर अचानक लाली दौड़ गई। उस दृश्य ने मेज के बाकी मेहमानों जितना ही उसके पति को भी चौंका दिया। ओ एलन, मैं बुदबुदाई उसी आधे उलाहने आधी सफाई वाले सुर में जिसमें उसके माता पिता कहते ओ ब्लैंकर लोग। जब से एलन ने पति का प्रस्ताव ठुकरा कर परिवार को असमंजस में डाला था, ओलेंस्का का नाम आते ही परिवार यही सुर निकालता, पर मैं के मुंह से ये स्वर सोचने पर मजबूर करता था। आर्चर ने पत्नी को उसी अजीब परायेपन से देखा जो उसे उसके परिवेश से सबसे एकरूप क्षणों में ही घेरता था। माहौल को कम भापते हुए माँ ने जिद से कहा, मैं हमेशा मानती आई हूँ कि काउंटेस ओलेंस्का जैसे लोग जिन्होंने कुलीन समाजों में जीवन बिताया है हमारी सामाजिक मर्यादाएं बनाए रखने में हमारी मदद करें, उन्हें अनदेखा न करें। मे का चेहरा अब भी लाल था और वो लाली ओलेंस्का की सामाजिक बेवफाई मान लेने से कही आगे का अर्थ समेटे लगती थी। परदेशियों को तो हम सब एक जैसे ही दिखते होंगे, मिस जैक्सन ने तीख फन से कहा। एलन को समाज की परवाह नहीं लगती, पर उसे किस चीज की परवाह है ये ठीक ठीक कोई नहीं जानता, मे ने कहा, मानो कोई ऐसा तटस्थ वाक्य टटोल रही हो जो न निंदा हो न प्रशंसा। हाँ यही तो, श्रीमती आर्चर ने फिर आह भरी। सब जानते थे कि काउंटेस ओलेंस्का अब परिवार की कृपा पात्र नहीं रही। उसकी प्रबल पक्षधर वृद्धा मैनसन मिंगट तक पति के पास लौटने से उसके इनकार का बचाव नहीं कर पाई। मिंगट परिवार ने असंतोष खुलकर नहीं जताया, उनकी एकजुटता की भावना बहुत गहरी थी। उन्होंने बस श्रीमती वेलैंड के शब्दों में बेचारी एलन को अपना स्तर खुद ढूंढने दिया, और वो स्तर अपमानजनक और समझ से परे ढंग से उस धुंधले समाज की गहराइयों में था जहां ब्लैंकर लोगों का राज था और लिखने वाले लोग अपने अस्त व्यस्त अनुष्ठान रचाते थे। अविश्वसनीय पर सत्य, इतने अवसरों और सुविधाओं के बावजूद एलन बस बोहिमियन होकर रह गई थी। ये तथ्य इस दलील पर मुहर लगाता था कि काउंट ओलेंस्की के पास न लौटना उसकी घातक भूल थी। आखिर जवान औरत की जगह पति की छत के नीचे ही है, खासकर तब जब वो उसे ऐसे हालात में छोड़कर निकली हो कि खैर कोई बारीकी से देखना चाहे तो ओलेंस्का सज्जनों के बीच खूब पसंद की जाती है। मिस सोफी ने ऐसे कहा मानो बात नरम कर रही हो, जबकि इरादा नश्तर चुभाने का था। आह यही तो वो खतरा है जिससे ओलेंस्का जैसी जवान स्त्री हर घड़ी घिरी रहती है। श्रीमती आर्चर ने उदास होकर हामी भरी। इस निष्कर्ष पर पहुंचकर महिलाओं ने अपने घाघरे संभाले और बैठक की लैंप रोशनी की ओर चल दी।
आर्चर और श्री सिलर्टन जैक्सन गोथिक पुस्तकालय में जा बैठे। अंगीठी के पास जमकर भोज की कमी की भरपाई एक उम्दा सिगार से करते हुए श्री जैक्सन गंभीर और बातूनी हो उठे। ब्यूफर्ट डूबा तो परतें खुलेंगी, उन्होंने घोषणा की। आर्चर ने झट सिर उठाया। ये नाम सुनते ही उसे हर बार स्क्वाइटर क्लिफ की बर्फ में फर और जूतों से सजा धजा चलता ब्यूफर्ट का भारी भरकम रूप याद आ जाता था। खुलेंगी पक्का, श्री जैक्सन बोलते गए, और निपटारा भी बेहद गंदी किस्म का होगा। उसने सारा पैसा रेजीना पर ही खर्च नहीं किया। खैर, वो तो मान कर ही चला जाता है ना। मेरा ख्याल है वो अब भी उबर जाएगा, युवा आर्चर ने विषय बदलने की गरज से कहा। शायद सुना है आज उसे कुछ रसूखदार लोगों से मिलना था। बेशक, श्री जैक्सन ने बेमन से माना। दुआ कीजिए कि कम से कम इस बार वे उसे निकाल लें। बेचारी रेजीना बाकी उम्र दिवालियों के किसी घटिया विदेशी सैरगाह में काटे, ये सोचना भी नहीं चाहता। आर्चर कुछ नहीं बोला। बेईमानी का पैसा कड़ी कीमत वसूल करे, ये उसे इतना स्वाभाविक लगता था कि उसका मन श्रीमती रेजीना ब्यूफर्ट की नियति पर नहीं टिका। वो अधिक नजदीकी सवाल पर लौट आया। काउंटेस ओलेंस्का का नाम आते ही मे का चेहरा लाल क्यों हुआ था? उस भरी गर्मियों के दिन को, ओलेंस्का के साथ बिताए उस दिन को, 4 महीने बीत चुके थे और तब से उसने उसे नहीं देखा था। वो जानता था कि एलन वॉशिंगटन लौट गई है उस छोटे घर में जो उसने और मेडोरा मैनसन ने ठिकाने के लिए लिया था। उसने उसे एक बार लिखा, बस 2-4 शब्द, ये पूछते हुए कि वे फिर कब मिल सकेंगे। उसका जवाब और भी छोटा था, अभी नहीं। उसके बाद उनके बीच कोई संपर्क न रहा और उसने अपने भीतर उसके लिए एक पूजा घर सा रच लिया था, जहां वो उसके गुप्त विचारों और ललकों के बीच विराजती थी। धीरे धीरे वही पूजा घर उसके असली जीवन का मंच बन गया, उसकी एकमात्र विवेकपूर्ण गतिविधि की जगह। वही वो अपनी पढ़ी किताबें ले जाता, अपने पालने पोसने वाले विचार और भावनाएं, अपने निर्णय और स्वप्न। उसके बाहर वास्तविक जीवन के मंच पर वो बढ़ते अवास्तविकता बोध के साथ जीता, रूढ़ियों और पारंपरिक नजरियों से यो टकराता, जैसे अनमना आदमी अपने ही कमरे के फर्नीचर से। अनुपस्थिति, यही उसकी अवस्था थी। आसपास के लोगों के लिए जो कुछ सबसे ठोस और वास्तविक था, उस सबसे वो इस कदर दूर था कि ये देखकर कभी कभी चौंक जाता कि लोग अब भी उसे वहीं मौजूद मानते हैं। उसने भापा कि श्री जैक्सन और रहस्य खोलने के लिए गला साफ
कर रहे हैं। मैं नहीं जानता कि आपकी ससुराल के लोग उन बातों से कितने वाकिफ हैं जो, खैर, ओलेंस्का के अपने पति का आखिरी प्रस्ताव ठुकराने पर कही जा रही है। आर्चर चुप रहा। श्री जैक्सन तिरछे ढंग से बोलते गए, अफसोस है, सचमुच अफसोस। उसने वो प्रस्ताव ठुकराया, ये बड़े दुख की बात है। दुख की बात, भला किस वजह से? श्री जैक्सन ने अपनी टांग के साथ साथ नीचे उस बेसिलवट मोजे तक नजर उतारी जो चमकते जूते से जा मिलता था। खैर, सबसे सीधी बात ले तो अब वो गुजारा किस पर करेगी?
अब अगर ब्यूफीट आर्चर झटके से उठा और उसका घूंसा काले अखरोट की मेज के किनारे पर पड़ा। पीतल की दवातों में स्याही कांप उठी। श्रीमान, आप कहना क्या चाहते हैं? श्री जैक्सन ने कुर्सी में जरा पहलू बदला और युवक के दहकते चेहरे पर शांत दृष्टि डाली। खैर, मैंने काफी भरोसेमंद सूत्र से सुना है, सच कहूं तो खुद वृद्धा कैथरीन से, कि जब काउंटेस ओलेंस्का ने पति के पास लौटने से पूरी तरह इनकार कर दिया तो परिवार ने उसका गुजारा भत्ता काफी घटा दिया, और इस इनकार से वो उस रकम से भी हाथ धो बैठी जो विवाह के समय उसके नाम तय हुई थी। लौटती तो ओलेंस्की वो रकम उसके नाम करने को तैयार था। तो बरखुरदार, मुझसे ये पूछकर कि मेरा मतलब क्या है, तुम्हारा मतलब क्या है? उन्होंने खुश मिजाजी से पलटवार किया। आर्चर अंगीठी की ओर गया और राख झाड़ने को झुका। ओलेंस्का के निजी मामलों की मुझे कोई खबर नहीं, पर आप जो इशारा कर रहे हैं उससे मैं सहमत नहीं। ओ, मैं नहीं, ये तो लेफर्ट्स कहता है मसलन, श्री जैक्सन ने टोका। लेफर्ट्स, वही जिसने उस पर डोरे डाले और दुत्कारा गया? आर्चर ने घृणा से कहा। अच्छा, ऐसा हुआ था? दूसरे ने ऐसे लपक कर कहा मानो इसी जवाब की घात में बैठे हों। वे अब भी अंगीठी के पास तिरछे बैठे थे और उनकी कठोर बूढ़ी निगाह आर्चर के चेहरे को फौलादी कमानी की तरह जकड़े थी। खैर, यही कहूंगा,
ब्यूफर्ट के धराशायी होने से पहले वो लौट जाती तो अच्छा था, उन्होंने दोहराया। अब गई और वो डूब गया तो इससे वही आम धारणा और पक्की होगी, और वो धारणा कहता चलूं अकेले लेफर्ट्स की नहीं है।
ओ, अब तो वो हरगिज नहीं लौटेगी, पहले से भी कहीं ज्यादा हरगिज नहीं, कहते ही आर्चर समझ गया। श्री जैक्सन इसी जवाब की ताक में थे। वृद्ध सज्जन ने उसे गौर से देखा। तो ये आपकी राय है, खैर आप बेहतर जानते होंगे, पर हर कोई आपको बताएगा कि मेडोरा मैनसन के पास जो थोड़े बहुत पैसे बचे हैं वे सब ब्यूफर्ट के हवाले हैं। वो डूबा तो दोनों औरतें कैसे पार लगेंगी, मेरी समझ से बाहर है। हाँ, ओलेंस का चाहे तो अब भी वृद्धा कैथरीन का दिल पिघला सकती है, उसके रुकने की सबसे कट्टर विरोधी वही रही हैं, और वृद्धा कैथरीन चाहे तो उसे जितना चाहे भत्ता दे दे, पर हम सब जानते हैं कि पैसे का जाना उन्हें जान से प्यारा है, और बाकी परिवार को ओलेंस का को यहाँ रोके रखने में कोई खास दिलचस्पी नहीं। आर्चर के भीतर बेकाबू गुस्सा उबल रहा था। वो उस हालत में था जब आदमी जानता है कि मूर्खता कर रहा है फिर भी किए बिना नहीं रहता। उसने ताड़ लिया कि जैक्सन भाप गए हैं, उसे ओलेंस का और नानी रिश्तेदारों की अनबन की खबर नहीं, और बूढ़े ने जोड़ भी लिया होगा कि आर्चर मंत्रणाओं से क्यों बाहर है। ये समझकर उसने सावधान रहने की ठानी, पर ब्यूफर्ट वाले इशारों ने उसे लापरवाह बना दिया था। फिर भी अपने जोखिम का ख्याल न भी रहा हो, इतना वो नहीं भूला कि श्री जैक्सन उसकी माँ की छत के नीचे है, यानी उसके भी अतिथि। पुराना न्यूयॉर्क आतिथ्य मर्यादा का कट्टर पालक था, मेहमान से बहस को झगड़े में बदलने की इजाजत नहीं थी। माँ के पास ऊपर चले, आर्चर ने रूखेपन से कहा जब श्री जैक्सन की आखिरी राख पीतल की तश्तरी में गिरी।
लौटती बग्घी में मैं अजीब ढंग से चुप रही, अंधेरे में भी उसकी धमकाती लाली महसूस होती थी। अर्थ वो न भाप सका, पर उसे उलेंस्का के नाम ने जगाया, इतना ही चेतावनी को बहुत था। दोनों सीढ़ियां चढ़े, आर्चर पुस्तकालय में गया। आमतौर पर मैं भी पीछे पीछे आती, पर उसने सुना कि वो गलियारा पार कर अपने कमरे की ओर बढ़ गई है। मैं, उसने अधीर होकर पुकारा। वो उसकी आवाज से चौंकी सी ठिठकी और लौट आई। ये लैंप फिर धुआं दे रहा है, नौकर इसे ठीक तो रखे, वो चिड़चिड़ाकर बड़बड़ाया। माफ करना, अब ऐसा नहीं होगा, उसने माँ से सीखी उसी दृढ़ खिली आवाज में जवाब दिया, और ये भाप कर कि वो अभी से उसे किसी युवा वेलेंट साहब की तरह पुचकारने लगी है, आर्चर और चिढ़ गया। मैं बत्ती धीमी करने को झुकी, रोशनी उसके गोरे कंधों और चेहरे की सुथरी रेखाओं पर चमकी। आर्चर ने मन में सोचा, कितनी जवान है ये, अंतहीन जिंदगी और कितने बरस चलेगी। उसे अपनी जवानी और रगों में मचलता खून सेहरन की तरह महसूस हुआ। अचानक वो बोला, सुनो, मुझे शायद कुछ दिनों के लिए वॉशिंगटन जाना पड़े, जल्द ही, शायद अगले हफ्ते। लैंप की चाबी पर हाथ रखे रखे मैं धीरे से मुड़ी। लौ की गर्मी से चेहरे पर आई लाली नजर उठाते ही फीकी पड़ गई। काम से? उसने यंत्रवत पूछा, मानो उसका वाक्य पूरा कर रही हो, लहजा ऐसा कि काम के सिवा कोई और वजह हो ही नहीं सकती। हाँ, जाहिर है, एक पेटेंट मुकदमा है जो सुप्रीम कोर्ट में लगेगा। उसने आविष्कारक का नाम बताया और लॉरेंस लेफर्ट्स की सी रवानी से ब्योरे गिनाता गया। मैं ध्यान से सुनती रही, बीच बीच में हाँ समझी कहकर सिर हिलाती। हवा पानी बदलना तुम्हें अच्छा रहेगा, उसके खत्म करने पर उसने सिर्फ इतना कहा।
और एलन से जरूर मिलते आना, उसने बेदाग मुस्कान के साथ सीधे उसकी आंखों में देखा, उतने ही सहज लहजे में जैसे किसी उबाऊ पारिवारिक कर्तव्य की याद दिला रही हो। इस विषय पर दोनों के बीच बस यही एक बात हुई, पर उनकी अनकही भाषा में उसका मतलब था, एलन के बारे में लोग जो कहते हैं मैं सब जानती हूँ, और उसे पति के पास लौटाने की हमारे परिवार की कोशिश का मैं दिल से समर्थन करती हूँ, ये भी जानती हूँ, हालांकि तुमने बताया नहीं, शायद बता नहीं सकते, कि तुमने उसे उल्टी सलाह दी और तुम्हारे कारण पूरा परिवार नानी तक चुनौती झेल रहा है, इसीलिए सिलर्टन जैक्सन के आज रात के इशारों ने तुम्हें बेचैन किया। तुम्हें कई इशारे मिल चुके हैं, औरों से तुम मानते नहीं, इसलिए अब मैं खुद कह रही हूँ, उस इकलौते ढंग से जिससे हम जैसे सुसंस्कृत लोग अप्रिय बातें एक दूसरे तक पहुँचा सकते हैं। तुम्हें ये जतला कर कि मुझे मालूम है वॉशिंगटन में तुम एलन से मिलने की सोच रहे हो, शायद इसी मकसद से जा रहे हो, और चूंकि मिलोगे ही तो मेरी खुली स्पष्ट इजाजत लेकर मिलो, और उसी मौके पर उसे साफ बता देना कि जो राह तुमने उसे सुझाई है वो उसे कहां ले जाकर छोड़ेगी।
वो मौन संदेश पूरा हुआ तो मे का हाथ अब भी लैंप की चाबी पर था। उसने बत्ती पूरी धीमी की, शीशे का गोला उठाया और रूठी हुई लौ पर फूंक मारी। फूंक कर बुझाने से बू कम आती है, उसने सुघड़ गृहिणी के अंदाज में कहा। दहलीज पर वो मुड़ी, ठिठकी और उसके चुंबन की प्रतीक्षा करने लगी।